हाथी की सूंड पकड़ी और एक ने हाथी की पूंछ पकड़ी और एक ने हाथी का पैर पकड़ा, एक ने हाथी का कान पकड़ा और एक ने हाथी का दांत पकड़ा और एक ने हाथी की पीठ पकड़ी। उस सबको बढ़ा करके के और एक शांखा आदमी जो है जिसके आंख है वो सबसे पूछता है कि क्यों भैया तुम हाथी देखा? बोले हाँ। तुम हाथी को पकड़ा? बोले हाँ। हाथी का स्वरूप का तुम्हारे कौन भाव है? बोले ठीक है। बोले बताओ कैसा है? तो जिसने पैर पकड़ा था वो कहता है कि दीवारी का खंभा है। अरे वो देखने वाला कहता है ठीक है ठीक है। दूसरे ने पूछा कि तुम बताओ भाई? उसने कहा कि हाथी जो है सो मूसल के जैसा है। जिसने दांत पकड़ा था वो कहता है कि मूसल के जैसा। तो बोला भी ठीक है। तीसरे ने पूछा कि तुम बता? उसने कहा कि हाथी जो है जैसे अपना लंबे अंग की जो बांह होती है लंबी बांह का ऐसा है। तो उसने सूंड पकड़ी थी। ठीक है। चौथे ने कहा कि हाथी जो है जैसे आपने गेहूं चावल के छोड़ने का छाद होता है ऐसा है। तो उसने कान पकड़ा था। पांचवे ने पूछा भी तुम बता? तो उसने पकड़ी थी पोंछ लेंस। तो वो कहता है कि भी जैसे कोई बीकानेर की तरफ जो एक प्रकार से कुएं में से जो जल निकाला जाता है उसका मोटा रस्सा होता है ऐसा है जो मोटा रस्सा था। तो उसने बेचारे ने पूछ पकड़ी। एक छत्ते ने पूछा तू बता भाई? तो बोला कि जैसे छाना का बटोरा होता है कि सबकी बात सुनकर एक ने कहा भी ठीक है। तो अब सब रोड़ो मचा लगे भी सभी ठीक कैसे होते हैं? अरे बोले सभी ठीक है। साथी बैठा पास उसने कहा सभी ठीक कैसे होता है? बोले सब सत्य हैं अब सब ठीक है सब मिलकर के हाथी होता है। इन्होंने एक एक अंग पकड़ा गया तो इनका क्या होगा? ठीक है। अब ये विचार करना है कि इस प्रकार जो सिद्धांत की बात है तो हम किसकी माने? कि जिसमें आपकी श्रद्धा हो प्रेम हो रुचि हो उसी को मान करके चलो, झगड़ा मत मचाओ चलो किसी को मान के। बोले चले फिर एक प्रकार से कहीं इधर उधर चले जाएंगे तो? बोले चले जाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। समझो कि ईश्वर जो है परमात्मा उसको जो ईश्वर को मान करके जो चलता है वो इधर उधर चला जाता है तो ईश्वर उसको जाने नहीं देता। जो थोड़ी गलती कर देता है ना तो आगे जाकर के उसका भगवान संशोधन कर देते, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर है, भगवान के वास्ते जा रहा है। तो भगवान सर्वज्ञ है, उनको तो ज्ञान है ना। कोई भी एक अंधा आदमी और आपके घर पर आ रहा है और आप उन्हें रास्ते में मिल गया और कोई उसने तीसरा आदमी पूछ गया भी तुम कहाँ जाते हो? उसने कहा कि राम भाई के घर जाता हूँ। राम भाई सुन रहे और वो दूसरे मार्ग जाता है तो राम भाई खुद कहता नहीं नहीं ये मार्ग नहीं है सुरदास इधर आओ ये रास्ता तुमने छोड़। तो राम भाई देखते हुए वो उस आंधे आदमी को जो रास्ता भूल के जा रहा है वो कैसे जाने देगा? तो संसार के बीच के वहां जितने भी मार्ग हैं और उन सभी मार्गों के बीच के वहां तर्क पर कसर सब एक एक मार्ग में किसी में एक किसी में दो किसी में पांच दोष आता ही है। तो उसे दोष का निराकरण पहले हो नहीं सकता। हो नहीं सकता कि परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है और परमात्मा का जो स्वरूप है उस कवि से कवि के यंता करके कोई भी असूर को नहीं बदला सकता, हमारा शास्त्र भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो अलग है, इस वास्ते उसका लक्ष्य नहीं किया जा सकता, वो अनिर्वचनीय है, इस वास्ते वचन के द्वारा नहीं समझा सकते, वो अनिर्देश है, इस वास्ते उसको संकेत करके नहीं बता सकते, वो सब जगह के बीच के माँ व्यापक है, इस वास्ते एक देश में नहीं बता सकते, और वो अचिंत है, मन का भी विषय नहीं है, इस वास्ते उसको अपने मन से मनन भी नहीं कर सकते। तो जब उसकी प्राप्ति होगी तभी उसको वो जानेगा, और पहले जो बताया जाता है वो उसके नदी के जैसे कोई समुद्र उसका तट हो, जैसे कोई नदी उसका तट हो, ऐसे लक्षण बताए जाते हैं। फिर जो तट पर पहुंच जाएगा तो समझो कि आप भी ठिकाना पहुंच जाएगा। तो इससे ये बातचीत होती है कि संसार के वहां जितने जो आचार्य पुरुषों के द्वारा चलाए हुए जो मार्ग हैं, श्रुति समृद्ध उत्तर वो तो ठीक है ही, किंतु श्रुति समृद्ध उत्तर नहीं होकर के भी जो दूसरे धर्मियों ने जो चलाया है वो भी हम उसको गैर ठीक नहीं कह सकते। तो ठीक है, तो फिर बोले सबका फल जो है तो आखिर में जाकर परमात्मा की प्राप्ति है। तो जो परमात्मा को मानता ही नहीं, ऐसा जो नास्तिक है, उसका जो मार्ग तो ठीक नहीं होगा ना। तो पहले तुम उसको स्वरूप में नास्तिक कहते हो, ईश्वर को मानता ही नहीं है, तो इसमें ईश्वर की कोई जिम्मेवारी नहीं, उसके लिए ईश्वर की कोई जिम्मेवारी नहीं है, किंतु ईश्वर को मानता है एक प्रकार से, उसे को ईश्वर इधर उधर नहीं जाने देंगे। उसे ये बात सिद्ध हुई कि कोई किसी भी मार्ग को मानता है उस मार्ग को में चलने देना चाहिए, उसको हेर फेर नहीं कर, और आखिर में वो ठिकाना पहुंच जाएगा, उसमें जो कमी है उसका संशोधन स्वयं भगवान करेंगे और अपने ठीक ठिकाना पहुंचा देंगे। अपने को इस विषय में निश्चिंत रहना चाहिए और अपने लिए कौन सा मांगना चाहिए कि माने जो मनुष्य जिस कौम में जिस धर्म में पैदा हुए, जैसे हम लोग एक प्रकार से हिंदू धर्म के हो या वैदिक सनातन धर्म को उसमें पैदा हुई, तो फिर हमारे लिए जो ऋषि मुनियों का बतलाया जो मार्ग, श्रुति स्मृति के वहां बतलाया जो मार्ग है, अब वो ही हमारे लिए ठीक है। और उसमें भी फिर किस आचार्य का मत माने, बोले सभी आचार्यों का मत है तो ठीक है, उनके बीच के मां जिसमें आपकी श्रद्धा हो और जिसमें आपकी प्रीति हो रुचि हो उसको ही मान लो, समझो आपका काम सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं, स्वयं भगवान समझो की रक्षा करने वाले है। इसी प्रकार से थी हर एक विषय में ये बात सिद्धांत की तय कर लेनी चाहिए। जैसे गीता है और गीता के ऊपर अनेक टीकाएं हैं, सभी आचार्यों की पढ़ाई करके गीता पर टीका है। इसके अलावा समझो कि आपने अंग्रेजों की जर्मन वालों की इनकी भी सब की गीता के ऊपर टीका है। तो अब गीता के ऊपर किस टीका को हम सत्य माने, तो गीता के ऊपर टीका और भाष्य और अनुवाद, टीका के का भी एक प्रकार से उस पर टिप्पणियां इस प्रकार से थी। अनेक भेद संस्कृत के वहां टीका है, हिंदी भाषा में है, गुरमुखी भाषा में है, गुजराती के बीच के वहां है, मराठी के बीच के वहां है, हमारे हिंदुस्तान की बहुत सी भाषाओं के बीच के वहां, और फिर बाहर की भाषाओं के बीच के वहां भी एक समझो कि उर्दू के बीच के वहां, फारसी के बीच के वहां, अनेक भाषा के बीच के वहां। तो गीता की ओर टीका है अनेक लिपियों में अनेक भाषाओं में, तो उनकी संख्या जो है न मालूम कितनी होगी। अब समझो 900 संख्या के मां तो अपने यहां है, कोई देख सके 900 भेद एक प्रकार से उनके बीच के मां, जब एक प्रकार से कोई किसके अंतर्गत कोई किसी की व्याख्या की व्याख्या यूं करके बात देवे, तो एक प्रकार से कम से कम उसमें बात करके बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सूर्य की प्रतिष्ठित आदमियों की और आचार्य आदि की जिनको हम बहुत आदर भाव से मानते उनकी जीवन निकाले तो कम से कम उसमें से सोल निकला चाहिए। अब उस सो के बीच के वहां फिर एक किसको निकाले, सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, सबसे बढ़कर के, सबसे बढ़कर के तो मूल ही है जो भगवान के वचन है जिसमें कोई मतभेद नहीं। बोले मूल के मां भी लोग मतभेद करते, कोई तो कहते कि विस्तार से ऐसे इतना अधिक शुरू, कोई कहते इतना है, इसमें भी कोई कोई का मतभेद होता है, तो बोले उसको छोड़ दो, शास्त्र श्लोक मान लो। और शास्त्र श्लोक को दुनिया के मां अधिकांश के बीच में सोम समझो कि 95% वालों ने माने, तो इस वास्ते शास्त्र श्लोक मान लो। अब शास्त्र श्लोक जो मूल है उसका अभ्यास करें और भगवान की शरण होकर हम भगवान से पूछे महाराज इसका क्या अर्थ है, तो एक प्रकार से भगवान हमारे मन में प्रेरणा करते हैं कि शुद्ध मन के वहां, तो भगवान स्वयं ही बतला देते हैं उसकी बुद्धि में वो बात आ जाए। पर मान लो थोड़ी के बाद थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम इसका निर्णय करके किसको माने, तो वही बात आती है कि जिसके मां आपकी श्रद्धा हो, रुचि हो, एक प्रकार से प्रीति हो, उसी को आप एक को मान करके चलो, उसको एक प्रकार से 10 मिनट में भी कह सके हैं, 2 दिन में भी कह सके, 10 दिन में भी कह सकते। थोड़ी बात के लिए गीता के ऊपर 100 टीकाएं हैं, और एक को हम ठीक करें तो निर्णय उसके विरोध में, अब दूसरी को पकड़ा तो उसके विरोध में भी निर्णय में, तीसरी को पकड़ा तो उसके विरोध में भी निर्णय में, तो कौन सी थी, तो इस प्रकार के तर्क से विचार करने से कोई भी ठीक नहीं है, सभी गड़बड़ फर्क की कसौटी से, और श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो सभी ठीक है कि किसी भी भाष के अनुसार या टीका के अनुसार हम चलें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उस गीता के मां एक एक श्लोक ऐसे बहुत से हैं कि जिसके धार्मिक से कल्याण हो जाता है, तो अपने कल्याण के लिए तो कोई एक श्लोक हम चुन लें उससे हमारा उद्धार हो जाता है। ऐसे बहुत से श्लोक हैं जिससे के विषय में किसी का मतभेद नहीं, ऐसे बहुत से श्लोक हैं, और फिर और अधिक जो हमारे को ज्ञान होता है वो तो संसार के प्रचार के लिए होता है, और अपने आत्मा के लिए तो एक श्लोक की बहुत काफी है। तो किसी भी एक आचार्य के मत को मान करके उसकी बनाई हुई टीका के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा कल्याण हो जाए, तो श्रद्धा से हम चलेंगे तो कल्याण हो जाएगा, और यदि तर्क से भी हम विचार कर करके देखेंगे तो एक प्रकार से कोई भी ऐसा अपने पास नहीं होगी, तो हमको तो श्रद्धा से काम लेना चाहिए, तो श्रद्धा विश्वास करके किसी भी एक टीका को मान करके हम चलेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें कहीं भूल होगी तो भगवान मदद करें, क्योंकि भगवान का कहा शास्त्र है ना, भगवान के वचन है, तो भगवान बांट दे उसके लिए एक प्रकार से उसको ठिकाने पहुंचाने के लिए, तो भगवान जो भी चाहे तो पहुंचा सकते ही है, तो इसलिए हमारे को इस विषय में कोई विचार नहीं करना चाहिए, किसी भी एक टीका को मान करके श्रद्धा और प्रेम से और विश्वास से उसके अनुसार चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलने से भी अपने वो ठीक ठिकाना पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये निर्णय हुआ कि श्रद्धा की दृष्टि से सभी गीता के अनुवाद ठीक है तो अगर गीता पर ना, और गीता के रचने वाला जो परमात्मा वो तो सब दुनिया में व्यापक मौजूद है, देख रहा है सब, तय पानी पादन तथा सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मन लोके सर्व महावृत तिष्ठति गीता के तेरह जगह तेरह का शिरोवेश का यह है कि उस भगवान कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं, कि सब दिगा उनके हाथ है, सब दिगा उनके पैर है, सब दिगा उनके नेत्र है, सब दिगा उन्हें के कान है, सब दिगा उनका मुख, सब दिगा उनका शरीर, सब कुछ घिर करके सब में व्यापक रूप स्थित है। तो वो तो सब देख ही रहा है, तो उसके सिद्धांत को मानने वाला पुरुष, उसकी गीता को मानने वाला पुरुष, और यदि कोई भूलस्त जाता है तो भगवान इसके लिए बात है, क्योंकि उसके विषय में चिंता नहीं करके की समझो कि किसी भी टीका को मान करके उसके अनुसार साधन करना चाहिए। और नहीं तो समझो कि आपने मूल को एक प्रधानता देनी चाहिए, उस मूल का जो भाषा अर्थ है वो सीख लेना चाहिए, व्याकरण पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपके मूल का ज्ञान हो जाएगा और फिर उसके अनुसार आप उसमें प्रवेश होकर के मनन करना चाहिए, तो स्वयं भगवान आप ही बता देंगे कि इसका तात्पर्य यह है। हमने तो ये बात देखी है कि मूल का अभ्यास करके कि उसमें प्रवेश होकर के उसके वहां गोता लगाया, तो इस प्रकार से मानो एक अपने आप ही रास्ता दिखने लगे आगे तक, आगे जो बढ़ते गए जो ज्ञान उसका बढ़ता गया। जैसे मटर के वहां बैठ करके चलते हैं तो समझो कि हजारों को उसका रास्ता पार कर देते हैं, चाहे रात का समाधि क्यों नहीं हो, उसमें एक समझो लाइफ रहती है, वो एक फलांग दो फलांग का रास्ता आगे से आगे बतलाती रहती है। अब दो फलांग गए तो आगे का दो बता दिया और जाते गए रास्ता वो लाइफ बतलाती चली जाती है। हमको इसकी जरूरत नहीं कि हजार कोस जाए तो हजार कोस की सारी सड़क पर रोशनी हो जाए तब जाए, अपने लालटेन के साथ के अपने मटर के साथ में जो लालटेन की रोशनी जो लगी हुई है वो हमारे लिए खूब काफी है। तो ईश्वर ने जो हमारे को शरीर दिया है उसकी वहां बुद्धि रूपी जो लाइट है उससे हमारा काम खेत तक चलेगा, इस बुद्धि के माध्यम से समझ आती जाए उसके अनुसार अपने रूप से चलते जरो आगे कर उसका तुम हमारी बुद्धि से मालूम होता रहेगा। और जहां कमी आई वहां भगवान खड़ी, जहां लाइट खराब हुई समझा वहां लाइट लिया और भगवान खड़ी है, इस वास्ते कोई चिंता की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से थी, और शक्ति भी हमारी मतलब खूब है कि भगवान के दरबार तक पहुंचने के बाद भी इसकी शक्ति और रहेगी, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का मार्ग समझो कि जैसे एक ही दिन का है, तो हमारे मटर में पेट्रोल और हमारे मटर की त्यागत इतनी है कि समझो कि महीनों तक वर्षों तक चल सके। तो इसलिए हमको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि कहो कि भाई एक प्रकार से पेट्रोल यदि बहुत वर्षों तक इसने मटर ने संसार चक्र में घुमाई है, जिसकी स्थिति इसका पेट्रोल शायद समाप्त हो गया हो, तो मुझे कोई चिंता नहीं, अब जितना पेट्रोल है उससे भी अपना काम चल सके। अभी बात कर रहे हैं तो समझो कि आज तो अब जिंदे है ना, तो आज ही हमारी मृत्यु से हमारा काम चल सके। यदि आज की तारीख में भी घंटा घंटा में मरे तभी हमारा कल्याण हो सके, यदि एक मिनट के बाद हम मरने वाले तो भी हमारा कल्याण हो सके, और एक सेकंड के बाद मरने वाला तो भी हमारा कल्याण हो सकता। बस आप तो इतनी आयु से काम चल सकता है, तो पेट्रोल के बल से जो मटर चल रही है और पेट्रोल समाप्त हो गया तो पहला चलने का जो वेग है उतने वेग से भी अपना काम हो सकता, क्योंकि भगवान का जो व्यवहार है बहुत नजदीक। तो अब एक प्रकार से कैसे कैसे अंतकाली से मामले समय मुक्तवा करिए वरम ये प्रयाति संबंध भावन याति ना प्रसंश, अंतकाल के समय में मेरा समय कहता है श्री को त्याग जाता है मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो भगवान को समण कर देना तो सेकंड भी नहीं रही, तो फिर एक प्रकार से क्या चिंता की बात है, सारा जो तेल मटर का चाहे बर्बाद हो गया किंतु अब उसके बीच के समझो कि एक थोड़ा भर भी तेल है यह समझो कि तेल समाप्त हो उसका देह भी है तो भी हमारा काम चल जाए, क्योंकि भगवान के धाम के निकट पहुंच गया ना 84 लाख योनियों के बीच के वहां सबसे उत्तम एक प्रकार से मनुष्य का शरीर है। ये तो तीर लगी नौका है, जैसे कोई सागर के पार जा रहा हो तो तीर लगी नौका है, और फिर उसके बीच के वहां ये भगवान ने ये विशेष बात कह दी कि हम समय में मुझको याद करने से उसका कल्याण हो जाता है। तो बात यह कि भगवान योगियों के परम योगी है, और अंत समय में भी भगवान को याद करने से भगवान मानो वहां खड़े ही है, उस वक्त हाजिर है। समझो कि भगवान अपने वहां से उस मटर को सो खेल कर ले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि भाई उसका मैं मांझी बन जाता हूं, जो मेरा ध्यान करने रहते शान समुद्र का मृत्यु संसार सागरा और भगवान नचे आप पार था मैया वैसी चेतता हूं मैया वैसी तेसाम तेसाम पुरुषा नाम जिन पुरुषों ने मुझमें तुझको लगा दिया उन पुरुषों को मैं मृत्यु संसार सागर से उसको उद्धार कर देता हूँ, नचरा देरिया का तुरंत एक प्रकार से उसको अपने पार कर देता हूँ। तो फिर अपने कोई चिंता नहीं, कहीं नदी आ गई नारा आ गया और बहुत से प्रकार से थी उसमें जल है तो कुली मजदूरों के द्वारा खेल करके ले जाते हैं, तभी हमारा जो बोट है मटर उस पार कर देते हैं कुली लोग। अरे भगवान जब पार करे तो बात ही क्या है, मैं तो कुली बन जाती उस वक्त की मां जी बन जाती, तो कोई अपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए किसी भी मार्ग को किसी भी गीता की टीका को स्वीकार करके उसके अनुसार हम अपना आसन करेंगे चलेंगे तो हमारे को निश्चय परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और उसमें जो कभी उसकी पूर्ति स्वयं भगवान करेंगे। योग क्षेम भाव में भगवान कहते हैं कि मैं योग क्षेम का बहन करने वाला हूँ, किसके योग क्षेम का, जो मेरी तरफ जिनका लक्ष्य है उनके योग क्षेम का। तो लक्ष्य हमारा भगवान की तरफ रहना चाहिए, फिर भगवान क्या है इस सिद्धांत को मान करके हमको इसको एक प्रकार से चलना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण मुक्तवंशी वाले की जय। सनातन धर्म की जय।